सभी माताएं आराम से मुख बंद करके जाएंगे। आवाज मुख का नहीं करना है, क्योंकि छोटा छोटा सा आवाज बड़ा आवाज बनके तैयार हो जाता है। तो आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी उर्मिला दीदी हमारे बीच में हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। 1981 से आप बाबा के बच्चे बने, 1985 से समर्पित रूप जीवन बनाकर अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपने अपने द्वारा अनेकों सम्मेलन अभियानों में अपनी सेवाएं दी हैं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के रिफ्रेश कोर्स, विभिन्न विभागों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी आपका सक्रिय योगदान रहता है। आप बहुत अच्छी लेखिका हैं, आपके लेख परिवर्तनकारी होते हैं, अनेक पत्रिकाओं में आपके लेख छपते हैं और अनेक कोर्स भी आप कराते हैं, जैसे तनाव मुक्त जीवन, व्यसन मुक्त जीवन और बहुत सारे क्लब वगैरह में भी आपने अपने प्रोग्राम दिए हैं। और वर्तमान समय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्यालय माउंट आबू में आप राजयोगी शिक्षिका और संयुक्त संपादिका ज्ञानमृत मासिक पत्रिका, सह संपादिका त्रैमासिक हरियाली पत्रिका में आप अपनी सेवाएं देती हैं। तो आपके ही मुख से सुनेंगे, सदा प्रसन्न रहने की कला क्या है। आदरणीय उर्मिला दीदी जी।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम दादी जी की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में सुन रहे थे। विशेषताओं में दादी की एक विशेषता ये भी है कि वो हमेशा हर्षित मुख प्रसन्न चित्त रहते थे। तो प्रसन्न चित्त रहना भी एक बहुत बड़ी कला है। प्रसन्न रहने के लिए मनुष्य ये सोचता है कि अगर मुझे मनचाही चीजें मिल जाएं और सब कुछ मेरे अनुकूल होता रहे, मेरी सब इच्छाएं पूरी हों, तो मैं प्रसन्न रहूं। लेकिन वास्तव में प्रसन्न रहने का मीनिंग कुछ और है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भगवान, तूने सबको प्रसन्नता दी, लेकिन मेरे जीवन में प्रसन्नता है ही नहीं, क्योंकि कुछ भी मेरे अनुकूल नहीं है। तो भगवान ने कहा कि वास्तविक प्रसन्नता वो नहीं है कि सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल मिले, लेकिन वास्तविक प्रसन्नता का अर्थ है कि जो भी कुछ मिले उसको अनुकूल बना लिया जाए, सब कुछ अच्छा मिले, ये भाग्य नहीं है, लेकिन जो भी कुछ मिले उसे अच्छा मान लिया जाए, अच्छा बना लिया जाए, ये भाग्य है। जब हम कहते हैं कि प्रसन्न रहना एक कला है, तो कला का अर्थ क्या है? कला का अर्थ होता है कि थोड़ी सी चीज में से कोई बहुत बड़ी उपलब्धि कर ली जाए, या कोई थोड़ी सी जगह में से बहुत कलात्मक तरीके से चले, उसको कला कहते हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि लोग लंबे चौड़े रास्ते पे चलते हुए ठोकर खा जाते हैं, उसे कोई कला नहीं मानता। लेकिन एक नट पतले से तार के ऊपर चलता है और फिर भी गिरता नहीं है, उसको लोग कला मानते हैं, उसको देखने जाते, उसकी टिकट लगती है। तो इसी तरह से प्रसन्नता भी एक कला है। और ये कैसी कला है कि सब कुछ हमारे विपरीत है, प्रतिकूल है, लेकिन फिर भी हम प्रसन्न हैं। अब जैसे हम यहाँ मधुबन में आए, इतना बड़ा बाबा का परिवार देखा और सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, स्वच्छता है, सब में आपस में प्यार है, यहाँ तो हम बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन मान लीजिए कहीं परिवार भी नहीं, हम अकेले हैं, और मान लीजिए कोई हमें प्यार भी नहीं कर रहा है, कोई हमारा सहयोगी भी नहीं है, और फिर भी हम प्रसन्न रह के दिखाएं, उसको कहेंगे हमारे अंदर एक बहुत बड़ी कला है। हम चाहे कहीं भी रहें, कैसे भी लोगों के बीच में रहें, फिर भी हम प्रसन्न रह लेते हैं। तब कहा जाएगा कि ये कला हमारे पास है। अब देखिए बरसात हुई, भारत में इस बार बहुत ज्यादा बरसात हुई, राजस्थान में भी हुई, आपके अपने अपने शहरों में भी हुई होगी। तो जब बरसात होती है तो हमको अच्छा नहीं लगता, कई बार बहुत ज्यादा बरसात होती है तो गलियों में पानी, कीचड़, सब कुछ गिला गिला। लेकिन जब बरसात होती है और हमको कहीं गली में जाना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, हम उस पानी को कभी नहीं कहते तू इधर हो जाए के इधर हो जाए, इधर से बह के इधर से बह। हम अपना थोड़ा सा कपड़ा उठाते हैं, पांव को सावधानी से रखते हैं और धीरे धीरे रास्ता पार कर लेते हैं। तो जैसे हमने पानी को सहन कर लिया, पानी होते हुए भी अपना रास्ता बना लिया, तो ऐसे ही अगर लोग भी हमारे अनुकूल ना हों तो क्या जरूरत है उनको बदलने की, उनको बिना बदले भी तुम अपना रास्ता बना सकते हैं। इसलिए अगर हमें हमेशा प्रसन्न रहना है तो इसका अर्थ ये है कि हम दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश न करें, लेकिन लोग चाहे जैसे भी हों हम उनको स्वीकार करें और उनके बीच में से अपना रास्ता बना लें। अच्छा मान लीजिए हम दूसरे लोगों को बदलने की कोशिश करें तो दुनिया में तो 700 करोड़ लोग हैं, 700 करोड़ लोगों को बदलने में कितना टाइम लगेगा, और मैं एक हूं तो ज्यादा आसान क्या है, 700 करोड़ लोगों को बदला जाए या एक को बदला जाए, ज्यादा आसान काम कौन सा है? 700 करोड़ को तो बदलने में जिंदगी चली जाएगी और एक को बदलने में एक सेकंड लगेगा। अभी आप देखिए, मालूम नहीं यहां सामने मान लो पूर्व दिशा है और पीछे पश्चिम दिशा है, अब चाहे हम जिंदगी भर कहते रहें कि पश्चिम सामने आ जाए, पश्चिम सामने आ जाए, सामने नहीं आएगा। लेकिन अगर हम गर्दन पीछे घुमा लें तो क्या होगा, पश्चिम दिशा सामने आ जाएगी। हम जरा से बदले और हमने दिशाएं बदल दी, और अगर हम जरा से ना बदले तो चाहे सारी जिंदगी चली जाए फिर भी कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जिन लोगों को हम बदलना चाहते हैं उनके नजदीक जाना पड़ेगा, लेकिन हम तो अपने आप के नजदीक 24 घंटे अपने आप को कभी भी बदल लो। इसलिए प्रसन्न रहने का नंबर वन फार्मूला है कि हम अपने को बदलें, अपना मार्ग बनाएं, लोगों को स्वीकार करें, वो जो भी हैं जैसे भी हैं बहुत अच्छे हैं। दूसरी बात ये है कि हम दुनिया में क्यों आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है, क्या हम दूसरे लोगों को अपने अनुसार ढालने के लिए आए हैं, तू भी मेरे अनुसार बन जा, तू भी मेरे अनुसार बन जा, तू भी जैसे मैं कहूं वैसे बन जा, या हम अपने आप को भगवान के अनुसार ढालने आए हैं, जीवन का उद्देश्य क्या है। बाबा आप जैसे कहेंगे वैसे मैं ढल जाऊंगा, जैसे लोहा होता है, पीतल होता है, तांबा होता है, उसको जो टकसाल होती है ना, सिक्के की जो मशीन होती है उसमें उसको ढाला जाता है, तो जब वो सिक्के के रूप में ढल जाता है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है। तो हम तो अपने आप को भगवान के अनुसार ढालने आए हैं, अगर हम दूसरों को अपने अनुसार ढालने में लग गए तो फिर खुद कब ढलेंगे, वो तो हमें समय ही नहीं मिलेगा। इसलिए सारी बातें छोड़ के हमें अपने आप को बाबा के अनुसार ढालना है, और जब हम अपने को बाबा के अनुसार अपने आप को ढालते हैं तो कितनी खुशी होती है, वाह वाह मैं बाबा जैसा बन गया, मुझे बाबा ने जैसा कहा वैसा बन गया, बाबा ने जो कहा वैसा मैंने आज्ञा का पालन किया, तो वो जो खुशी है, वो जो प्रसन्नता है, वो अनंत होती है। इसलिए प्रसन्न रहने का फार्मूला है कि हम अपने आप को बदलेंगे, दूसरे को नहीं बदलेंगे। कई बार हम छोटी छोटी बातों में परेशान होते हैं, कैसे परेशान होते हैं, किसी आदमी को हमने बाजार में भेजा कोई चीज लेने के लिए, उसको लिख दिया कि भी तुम बाजार से ये चार चीजें लेकर के आ जाना, वो बेचारा तीन चीजें ले आया और एक चीज भूल गया, वापस लौटा। अब देखना हम क्या करेंगे, भूलेगा वो और उसकी सजा हम अपने आप को देंगे, देंगे ना, तुम भूले ही क्यों, तुमको तो कोई काम याद ही नहीं रहता है, अपना समय लगाएंगे, झुंझलाएंगे, दुखी होंगे, कोई कोई तो मूड ही खराब कर लेते हैं, और कोई कोई क्या करेंगे उसका पूरा इतिहास याद करेंगे, तुमको पता है एक बार मैंने वो काम बताया तुम तब भी भूले थे, फिर दूसरी बार बताया तब भी तुम भूले थे, कितना लंबा इतिहास याद करेंगे, कितना समय गंवाएंगे। इतनी देर में तो हम जाकर के वो चीज बाजार से ले आते जितना हमने समय गंवाया। अच्छा वो भूला क्यों? क्योंकि उसकी नेचर है भूलने की, स्वभाव होता है ना किसी किसी का। तो 63 जन्मों में कई लोगों के कई स्वभाव बन गए, जैसे पानी का स्वभाव बन जाता है, जहां ढलान होता है वहां वो बहता है। ऐसे ही मनुष्य का भी 63 जन्मों में स्वभाव बन गया, कोई भुलक्कड़ बन गया, कोई आलसी बन गया, कोई गुस्सैल बन गया, किसी में ईर्ष्या आ गई, और कोई कामचोर बन गया। तो क्या करें हम, इस स्वभाव को कैसे बदलें? बाबा ने कहा पहले अपने स्वभाव को बदलो। खुश रहने के लिए 3 काम करने हैं। पहला काम है कर्म बंधन को काटना है, दूसरा काम है स्वभाव को मोड़ना है, और तीसरा काम है अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ना है। कर्म का जो बंधन है, जब हम कर्म करते हैं ना, तो कर्म करते हुए अगर हम कर्म का चिंतन करते हैं, अगर हम मनुष्यों का चिंतन करते हैं, अगर हम पदार्थों का चिंतन करते हैं, तो कर्म बंधन बन जाता है। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा, अगर सदा प्रसन्न रहना है तो इन तीनों का चिंतन मत करो, बाबा का चिंतन करो, जिसको बाबा कहते हैं कर्म योग। जैसे आपने देखा है बहनें जब रसोई में काम करती हैं, तो जो गर्म बर्तन होता है, भगोना होता है, कढ़ाई होती है, उसको ऐसे सीधा हाथ से नहीं पकड़ती। क्यों नहीं पकड़ती? सबको मालूम है क्यों नहीं पकड़ती, मालूम है ना सभी बहनों को। बहनें तो बड़ी हैं, छोटे बच्चे को भी आप पूछो कि इस गर्म को हाथ लगाओ तो बच्चा मना करेगा, बोलेगा मेरा हाथ जल जाएगा, नहीं लगाना। देखो हमको अपने हाथ से कितना प्रेम है, हम सीधा नहीं पकड़ते क्योंकि हाथ जल जाएगा। तो जैसे किसी बर्तन को गर्म को सीधा नहीं पकड़ना, ऐसे ही किसी चीज को, व्यक्ति को, वस्तु को, पदार्थ को सीधा नहीं कहना कि ये मेरा है। अगर हम किसी को मेरा मानते हैं तो क्या होता है, चीज को सीधा पकड़ते हैं तो हाथ जलता है, और चीज को मेरा मानते हैं तो आत्मा जल जाती है। जलती है कि नहीं जलती है? मेरा मेरा करते हैं तो, मेरा तो कुछ है ही नहीं, और हम मेरा मेरा करते रहते हैं तो आत्मा बंधती भी है, जलती भी है, दुखी भी होती है, अशांत भी होती है। तो बाबा ने क्या कहा कि जैसे आप गर्म बर्तन को पकड़ने के लिए बीच में कपड़ा रखते हो, या बीच में पकड़ रखते हो, या बीच में संडासी रखते हो उससे पकड़ते हो, ऐसे ही जब आप किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आते हो, संबंध में आते हो, तो बीच में किसको रखो? बाबा को बीच में रखो। तो बाबा को बीच में रखोगे तो क्या होगा, कर्म बंधन नहीं बनेगा, कर्म बंधन कटते जाएंगे। बाबा को बीच में रखने से कर्म बंधन खत्म हो जाएंगे। हर बात में बाबा को बीच में रखना है हमको। अभी आप सब युगल मुहूर्त यहां पे आए हैं, तो देखो पहले जमाने में कहते थे कि जब आपस में शादी होती है तो एक और एक मिलकर के 11 हो जाते, द्वापर युग के शुरू में ऐसे कहा करते थे। फिर द्वापर युग के बाद कलाएं कम होती गई, कम होती गई, उसके बाद एक और एक मिलके 11 नहीं, एक और एक मिलके 2 हो गई, शक्ति कम होती गई। फिर धीरे धीरे घोर कलयुग आया तो फिर क्या हो गया, 1/2 हो गई, 1+1 नहीं, शक्ति दुगनी नहीं हुई, 1/2 हो गई। क्योंकि लड़ाई झगड़ा, भाव नहीं मिलता, स्वभाव नहीं मिलता, अशांति होती है, दुखी होती हैं, 1/2 हो गई। फिर जब संगम युग आया तो बाबा ने क्या कहा, बीच में मेरे को बिठाओ। तो जब हम बीच में बाबा को बिठा लेते हैं तो कितने हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं, ध्यान से गिनती करो, कितने हो जाते हैं, 101, एक इधर और बीच में कौन, बीच में बाबा। इसलिए संगम युग में हमारी शक्ति कितनी बढ़ जाती है बाबा को साथ लेने से, तो बाबा ने कहा बीच में मेरे को जरूर रखो। देखो हर जगह बाबा बीच में घुसता है ना, ये बच्चे तुम्हारे नहीं है, बीच में मेरे को रखो, दो बच्चे हैं तो तीसरा मेरे को बनाओ। हर जगह बाबा घुसते हैं, अगर तुम्हारा बिजनेस है तो पार्टनर मुझे बनाओ। ये तो देहधारी युगल है, असली युगल तो मैं हूं, ऐसे बोलता है ना बाबा, अब फिर से सिंगल बन जाओ और मुझे युगल बनाओ। तो हर जगह बाबा बीच में घुसते हैं। क्यों घुसते हैं? क्योंकि बाबा के घुसने से कई गुणा प्राप्ति बढ़ जाती है, इसलिए कर्म बंधन को काटना है और स्वभाव को क्या करना है, मोड़ना है। स्वभाव को जरा सा मोड़ना है, जैसे कोई लोहे का तार होता है ना, वो सीधा अकड़ के खड़ा हुआ है, और अगर वो जरा सा मुड़ जाए कितना अच्छा हो जाए। टूटना नहीं है, अकड़ना भी नहीं है, लेकिन मोड़ना है। मोड़ने के बहुत फायदे, उसी को बाबा कहते हैं, जो मोल्ड होता है ना वो रियल गोल्ड बन जाता है। एक बार मैं किसी फैमिली में गई थी तो उस बहन ने मुझे कहा कि हमारे बच्चों को ज्ञान सुनाओ। मैंने कहा बड़ों को नहीं सुनाना। बोला नहीं, बड़ों को नहीं, बच्चों को ज्ञान सुनाओ। तो मैंने कहा बच्चों को क्या प्रॉब्लम है, बच्चे तो छोटे छोटे थे, 14 साल का था एक, शायद 16 साल का होगा। मैंने कहा अभी इनको क्या है, पढ़ते हैं और ये तो मौज करते हैं। कहा नहीं बहन जी, इनको ज्ञान सुनाओ, देखो क्या हुआ। वो प्रॉब्लम सुनाने लगी, हमारे घर में ना मेहमान आ गया, समझो एक बुजुर्ग महिला जो इनकी दादी लगती थी रिश्ते में, वो आ गई। तो हमने इन दोनों बच्चों को कहा बेटा आज तुम दोनों एक कमरे में रह जाओ और एक कमरे में ये जो मेहमान दादी आई है ना इसको रखेंगे। तो बच्चे कहते हैं नहीं नहीं, ये दादी को ना तुम लोग होटल में भेज दो, हम अपना कमरा नहीं छोड़ेंगे। तो कहा इनको समझाओ कि समय अनुसार मनुष्य को ढल जाना चाहिए, कल को क्या पता जीवन में ऐसी बात आ जाए कि घर में कमरा ही एक और उसमें ही चार लोगों को रहना पड़ जाए, तो ढलना तो चाहिए ना। तो एक होता है स्वभाव अकड़ना कि मेरे को तो यही चाहिए, मेरे को तो इसके बिना चैन ही नहीं पड़ता, अगर ऐसा ना हो तो मेरी तो नींद ही फिट जाती है, मेरा तो चैन ही चला जाता है, मेरे को तो ऐसा ही चाहिए। और एक होता है स्वभाव लचीला, ऐसे होगा तो भी चल जाएगा, ऐसे होगा तो भी चल जाएगा, ये चीज मिल जाएगी तो भी ठीक है, नहीं मिलेगी तो भी ठीक है। तो बाबा ने कहा स्वभाव को मोड़ना है, कर्म बंधन को काटना है, स्वभाव को मोड़ना है। और तीसरी बात, जब आप कर्म बंधन काटेंगे तो भी शक्ति बचेगी, स्वभाव को मोड़ेंगे तो भी शक्ति बचेगी, और इस बची हुई एनर्जी को बाबा के साथ जोड़ना है। भक्ति मार्ग में जब लोग भगवान की याद में बैठते हैं ना तो हाथ जोड़ते हैं लेकिन मन को नहीं जोड़ते। बाबा ने हमको क्या कहा, हाथ मत जोड़ो लेकिन मन को जोड़ो। तो जब हम बाबा के साथ मन को जोड़ते हैं तो बाबा हैं खुशियों का सागर, प्रसन्नता का सागर, और फिर बाबा से वो फ्लो ऑफ हैप्पीनेस हमारे ऊपर आने लगता है। बाबा कहते हैं मैं सर्वशक्तिवान हूं और आप बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर्वशक्तिवान से उसके हर बच्चे को शक्तियों का वर्षा मिला है। अब प्रसन्नता भी उसमें एक शक्ति है, विज्ञान का एक नियम है, विज्ञान का ये नियम है कि मान लीजिए एक जगह हवा बहुत ज्यादा हो और दूसरी जगह हवा कम हो तो अधिक दबाव से हवा कम दबाव की ओर बहने लगती है। एक जगह पानी बहुत ज्यादा हो और दूसरी जगह पानी कम हो तो वो जो अधिक पानी है वो कम पानी की तरफ बहने लगता है। ये जो प्रकृति के तत्व है ना, इनका ये नियम है। अध्यात्म में भी ये नियम लागू होता है। शिव बाबा हैं सर्वशक्तिवान, अर्थात शक्तियां फुल हैं और हमारे अंदर शक्तियां फुल हैं क्या, कम है। तो जब हम बाबा के नजदीक जाते हैं तो क्या होता है, जो भरा हुआ है उसमें से ऑटोमेटिक शक्तियां, जो खाली है उसकी तरफ आने लगती हैं, बिना कहे आने लगती हैं। ये नियम है, विज्ञान का भी नियम है, अध्यात्म का भी नियम है। तो हमें चाहिए प्रसन्नता की शक्ति, हमेशा खुश रहने की शक्ति। तो हम क्या करें, हम बाबा के पास जाएं जो खुशियों का सागर है। और जैसे विज्ञान का, विज्ञान के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, उनमें एक बटन होता है, आपको वो एक बटन दबाना है, कमांड देनी है, तो जो चीज आपको चाहिए सामने वही आ जाएगी। कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है, एक क्लिक करो वही वाली फाइल खुल जाएगी। मशीन में भी ऐसे ही होता है, एक बटन दबाओ, आपको क्या चाहिए, आपको फोटोकॉपी चाहिए, आपको लेमिनेशन चाहिए, कि आपको प्रिंट आउट निकालना है, जो बटन दबाओगे वही चीज आपके सामने आ जाएगी। तो हम बाबा के पास गए, हम बीच बीच में उदास हो जाते हैं, छोटी सी बात के कारण हमारी खुशी गुम हो जाती है, मूड खराब हो जाता है, संकल्प चलने लगते हैं। तो हमको बाबा से कौन सी शक्ति चाहिए, प्रसन्नता की, अनलिमिटेड हैप्पीनेस चाहिए, सदा प्रसन्न रहें, कुछ भी होता रहे लेकिन हमारी खुशी गायब ना हो, हमको बाबा से ये वरदान चाहिए, ये शक्ति चाहिए। तो हमको क्या करना है, बाबा के नजदीक गए और बटन दबाया। वहां बटन दबाने का अर्थ क्या, संकल्प किया, बाबा मैं आत्मा प्रसन्नता से फुल हो जाऊं, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहूं, मेरी खुशी का खजाना कभी भी कम ना हो। और फिर हम बाबा के सामने बैठ गए, तो क्या होगा, जो ऑल माइटी अथॉरिटी है ना, उस ऑल माइटी की जो प्रसन्नता की माइट है, वो फ्लो होनी शुरू हो जाएगी। जैसे हमने हवा की बात कही, अधिक दबाव से हवा कम दबाव की ओर जाती है, तो जो प्रसन्नता का फुल खजाना है, वहां से प्रसन्नता का फ्लो आना शुरू होगा और आत्मा में खुशी का फ्लो आने लगेगा। आप महसूस करेंगे, जैसे करंट लगता है तो लगता है ना शरीर में झनझनाहट हुई, या कोई खुशी की बात सुनते हैं तो क्या होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, अरे इतना अच्छा। तो ऐसी आत्मा को महसूस होगा कि मेरे अंदर खुशी का फ्लो आ रहा है, मैं खुशी के झरने के नीचे हूं, जैसे खुशी का खजाना मुझ आत्मा में भरता जा रहा है। मेरा बाबा जो खुशियों का सागर है, जो प्रसन्नता से लबालब है, उसमें से वो खुशी का फ्लो मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, मुझ आत्मा में भरता जा रहा है, और मैं आत्मा तो खुशी में फुल हो गई हूं। अब मेरे में इतनी खुशी आ गई है कि कोई भी परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु, प्रकृति, मौसम, बीमारी, कोई भी मेरी खुशी को हिला नहीं सकता, कोई भी मेरी खुशी को छीन नहीं सकता। मुझे केवल खुशी नहीं मिली लेकिन खुशी का वरदान मिला, खुशी का खजाना मिला। अल्पकाल की खुशी नहीं मिली लेकिन मुझे सदा काल प्रसन्न रहने का बाबा से वरदान मिला। तो ऐसे हम एक मिनट, दो मिनट, पांच मिनट, दस मिनट बाबा के सामने बैठे रहे और खुशी का फ्लो आता गया, आता गया। और फिर हम उस खुशी के फ्लो को लेकर के नीचे आ गए। नीचे आए तो हमने क्या देखा कि हमारी एक बहुत ही प्रिय चीज को किसी ने खराब कर दिया, थोड़ा सा उसको खरोंच लगा दी। तो आमतौर पे क्या होता था, पहले ऐसा कुछ होता था तो एकदम थोड़ी सी खुशी, ये क्या हुआ, किसने कर दिया। लेकिन अब क्या है, अब हम कहां से आ रही हैं, खुशी का खजाना भरपूर करके आ रही हैं। तो उस चीज को देखेंगे तो तुरंत क्या याद आएगा, मैं तो प्रसन्नता से भरपूर हूं, मास्टर खुशियों का सागर हूं, बाबा से मुझे अनलिमिटेड हैप्पीनेस का वरदान मिला है। दुनिया है ये तो बनती है बिगड़ती है, चीजें बनती हैं बिगड़ती हैं, चीजों के लिए मैं अपनी खुशी को नष्ट क्यों करूं। तो चूंकि मैं वरदान लेके लौटा हूं, मुझे स्मृति है, तो उस स्मृति में मैं इतना खोया हुआ हूं कि ये छोटी मोटी बातें मेरे पे असर ही नहीं करती हैं। पहले ये छोटी मोटी बातें मुझे हिला देती थी लेकिन अब तो मुझे ऐसा वरदान मिल गया कि छोटी मोटी बातें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हैं। तो मुझे यहां से अनलिमिटेड हैप्पीनेस लेके जानी है, हमारे पास है और पहले से हमारी कई गुना बढ़ गई है। लोग हमें कहते हैं कि अब तो आप आजकल आप बहुत खुश रहने लगे हो, आपको क्या मिल गया। ऐसा है, लेकिन फिर भी कभी कभी कोई कोई चोर आता है और खुशी के खजाने को चुरा ले जाता है। हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि अब पहले वो चोर दिखाई देता था, बिना दिखे चोरी करता है। बाबा कहते हैं ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो जो माया है उसका रूप भी सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाएगा। आप भी फरिश्ते बनेंगे, माया भी फरिश्ता बन जाएगी। आप जितना सूक्ष्म बनेंगे, माया भी उतनी सूक्ष्म बन करके छोटी छोटी बातों में हमारी खुशी को ले जाने की कोशिश करेगी। लेकिन माया दो कदम आगे तो हम माया से चार कदम आगे। अब हम क्या करेंगे, बाबा से इतना खुशियों का खजाना भरपूर करेंगे कि माया के सूक्ष्म रूप को भी पहचान लेंगे और अपनी खुशी को गायब नहीं होने देंगे। इसको कहते हैं प्रसन्न रहने की कला। सब कुछ मिला तब प्रसन्न रहे तो क्या बड़ी बात है, लेकिन कुछ नहीं मिला फिर भी प्रसन्न रहे, ये है कला। लोगों ने हमारी बहुत महिमा की और हम प्रसन्न हो गए, ये क्या बड़ी बात है, ऐसे तो कोई भी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन हमारी महिमा नहीं की, उल्टा हमारी ग्लानी कर दी और फिर भी हम प्रसन्न रहे, इसको कहते हैं कला। सब लोग हमें सहयोग दे रहे हैं फिर प्रसन्न हुए तो क्या हुआ, लेकिन कोई सहयोगी नहीं, हम अकेले हैं और फिर भी हम प्रसन्नता के साथ कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रसन्न रहने की कला। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे कभी भी अपने को अकेले मत समझो, आपकी सर्व शक्तियां आपके साथ हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 100 लोग हो और उनमें शक्ति हो ही ना, तो वो 100 का भीड़ क्या काम करेगी। लेकिन कोई व्यक्ति एक अकेला हो और उसके पास सर्वशक्तिवान की शक्तियां हो तो जीत किसकी होगी, अकेले की होगी। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि पांडव थोड़े थे लेकिन उनके साथ सर्वशक्तिवान की शक्तियां थी, वो जीत गए, और कौरवों की भीड़ थी लेकिन फिर भी वो हार गए। तो प्रसन्न रहने की कला अर्थात सर्वशक्तिवान की सर्वशक्तियां हमारे चारों ओर है। हमारी दादी जानकी कहती हैं कि जितनी भी शक्तियां हैं ना, ये मेरी सखियां हैं, तो मैं जब भी जरूरत होती है उसको आवाज देती हूँ, आओ सहनशीलता, आओ समाने की शक्ति, आओ प्रसन्नता, आओ मेरा ये काम करो, और वो शक्तियां हाजिर हो जाती हैं। अगर हम परदेश में जाएं तो हमारे साथ अगर मनुष्य जाए तो टिकट लगे, लेकिन ये शक्तियां तो बिना टिकट हमारे साथ यात्रा करती हैं। इसलिए हम यहां से प्रसन्नता की शक्ति लेके जाएंगे। आप कहेंगे बहन जी आप एक ही लेके जाएंगे क्या, ये जो प्रसन्नता की शक्ति है ना, ये सारी शक्तियों का सार है। प्रसन्न रहने की कला सर्व कलाओं का सार है। अगर हमारे में सहनशीलता नहीं होगी तो प्रसन्न कैसे रहेंगे, सामना करने की शक्ति नहीं होगी तो प्रसन्न कैसे रहेंगे, समाने की शक्ति नहीं होगी तो प्रसन्न कैसे रहेंगे। सर्व शक्तियां जीवन में आएंगी तो प्रसन्नता भी आएगी, और प्रसन्नता आएगी तो सर्व शक्तियां भी जीवन में आएंगी, तो दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन है। तो दादी डे पे जैसे हमारी दादी हमेशा प्रसन्न रहती थी, इतनी सेवा, इतना बड़ा परिवार और इतना सब जिम्मेवारियां निभाते भी दादी का प्रसन्न चेहरा हमें सदा प्रसन्न रहने की प्रेरणा देता है, तो हम भी ये कला यहाँ से दादी डे पे सीख के जाएंगे। ओम शांति।